धवला पुस्तक 12वी लेक्चर नंबर 18 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कम्मट्ठजनियवेयण वहिसमुत्तिन्नये जिने नमिं वेयण महाहियारम् आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना, और इस 12वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 119 पर हम आ गए, 119। वेदना भाव विधान के बाद जो दो चुलिकाएं हैं उसमें से हम दूसरी चुलिका देख रहे थे। देखो यहाँ हमारा कल से स्थान प्ररूपना सब चालू हुई थी, वैसे परसों से ही शुरू हुई थी, थोड़ा कल का विषय लेके फिर आगे बढ़ते हैं। देखो स्थान प्ररूपना, स्थान किसको कहना, तो स्थान तो अनुभाग स्थान भी होते हैं और सत्व स्थान भी होते हैं, तो अनुभाग यानी अनुभाग बंध स्थान भी होते हैं। बंध के द्वारा जो स्थान उत्पन्न होते हैं उसको अनुभाग बंध स्थान कहेंगे, और बंधा हुआ पूर्वबद्ध जो अनुभाग का घात होकर जो स्थान उत्पन्न होते अलग अलग तो उसको कहते हैं, यानी वैसा जो अनुभाग हो जाता है जीवों का उसको कहेंगे अनुभाग सत्व स्थान या सत्व स्थान। अब वो कितने हैं, अगर सेम हो जाए तो उसको बंध स्थान ही कहते हैं, यानी घात होकर बंध जैसा ही अगर अनुभाग हो जावे तो उसको बंध स्थान ही नाम देते हैं। ख्याल में आई ना बात यहाँ पर, तो यहाँ हत समुत्पत्ति यानी जो वो घात करके जो होता है उसी को हत समुत्पत्ति कहते हैं, घात के द्वारा जो स्थान होते हैं। देखो यानी हत समुत्पत्ति स्थान है, वो स्थान ही घात के द्वारा हुआ है, पहले अधिक बंधा था मान लेते हैं और फिर वो बंध स्थान वो नहीं रहा, थोड़े परमाणुओं का घात होना उसको स्थान बदलना नहीं कहते, उसको तो अपकर्षण कहेंगे उसका, यानी वो बंधा हुआ वो स्थान नहीं रहा और वो घात के द्वारा कोई स्थान प्राप्त हुआ तो उसको हत समुत्पत्ति कहेंगे। उस दिन वो फोन आया था ना जबलपुर से, वो एक वहाँ के ब्रह्मचारी है, अच्छा अभ्यास है, कर्णान योग के इंटरेस्टेड है, हमेशा फोन करते, तो उन्होंने बोले हत समुत्पत्ति क्या होता है, हमने पहली बार शब्द सुना, वो जय धोला का अभ्यास कर रहे हैं। देखो सत्व, ये जो सत्व स्थान जो होते हैं वो सेम कह सकते हैं उसको, परंतु ये तो स्थान यानी जो उस जीव का स्थान कौन सा कहेंगे जो मैक्सिमम अनुभाग वाला है, परंतु ये बीच बीच में जो घात करके जो उत्पन्न होते हैं अलग अलग उसी को कह सकते हो, हत समुत्पत्ति हत हत समुत्पत्ति ऐसे दो नाम है उसमें, घात और घात का घात, उसकी चर्चा आएगी। तो ये कितने हैं ऐसे तो असंख्यात लोक प्रमाण है ये जो वेरिएशंस बताए हैं, क्योंकि हमने देखा ना जघन्य स्थान कहाँ होता है, ज्ञानावरण का अगर जघन्य अनुभाग का दसवें के अंत में, उसके उपांत समय में अनंत गुणा वाला, अनंत गुणा अधिक वाला ऐसे स्थान अपूर्व करण तक देखे, फिर वो षट स्थान वृद्धि वाले स्थान पाए जाते हैं। अब यहाँ उसकी आगे चर्चा चलेगी कि ये द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करके एक परमाणु के अनुभाग को यहाँ स्थान कहा है, उसकी बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। और ये असमान धन वाले एक पंक्ति में हम लिखते हैं ना, एक पूरे वर्गणा का एक परमाणु उसका जो अनुभाग है, दूसरी वर्गणा के एक परमाणु में वो अनुभाग एक से ज्यादा है, वर्गणा वर्गणा प्रति एक एक से जो अधिक होता है, तो उसके बाद हमने देखा था कि जो दूसरा स्पर्धक तीसरा स्पर्धक इस तरह से हमने देखे थे उसके अनुभागों की, वो सारे ही उस एक स्थान में गर्भित है। स्थान किसको कहेंगे, अंतिम वर्गणा के एक परमाणु के अनुभाग को, परंतु इन सभी परमाणुओं के जो अनुभाग है उसकी टोटल यहाँ नहीं लेनी है, बस ये इतना अलग अलग तरीके से उन्होंने इस पर शंका समाधान किया था। अब यहाँ 119 पेज पर रहते हैं। अभी इस पर्धक
हाँ यहाँ पे जो संख्या लोकप्रमाण स्थान एक स्थान के लिए परिणाम बताए हैं,
फिर से
एक स्थान के लिए
एक अनुभाग स्थान के लिए
परिणाम कितना संख्यात्मक प्रमाण बताए।
देखो एक स्थितिबंध स्थान एक स्थितिबंध अध्यवसान के लिए
असंख्यात्मक,
एक अनुभाग स्थान के लिए एक असंख्यात्मक प्रमाण ऐसा नहीं लिखा। जैसे हम स्थिति के भेद और उसके कारणभूत परिणाम तो असंख्यात लोक प्रमाण एक पर्टिकुलर स्थिति, अब उसमें से एक पर्टिकुलर स्थितिबंध अध्यवसान स्थान उसके साथ कौन से परिणाम हो सकते अनुभाग के, तो उसको कहा असंख्यात लोक प्रमाण। क्योंकि यहाँ अनुभाग स्थान को ही अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान ये सब उपचार करके कथन है, उसमें और डिफरेंसेस
तो
नहीं किए।
एक अनुभाग के लिए एक ही स्थान का परिणाम होगा,
हाँ उस परिणाम से वो अनुभाग का बंध हुआ, उसकी उसकी डिटेल्स आई नहीं अभी तक। अभी तो इतना ही है कि अनुभाग स्थान को अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहकर प्ररूपणा हो रही है, पहली बात है ना। अभी आगे आएगी बात तो 118 पर वहाँ से मैं फिर पढ़ती हूँ। देखो वो स्पर्धक की बात है ना उसके, यानी 118 पर जो नया पैराग्राफ है ना वहाँ से ही शुरू करते। देखो इस जघन्य स्थान को, जघन्य स्थान कहाँ है, सूक्ष्म सांप्राय के अंत में, सब जीवों से अनंत गुणे गुणकार के द्वारा गुणित करने में, जो जीव राशि वाला जो अनंत है, क्योंकि अनंत के बहुत भेद है, तो यहाँ कौन से अनंत से बात कर रहे हैं, तो जीव राशि वाला अनंत, तो उससे भी अनंत गुणा संख्या से अगर हम गुणा करेंगे, सूक्ष्म सांप्राय के द्विचरम समय में बंधे गए द्वितीय अनुभाग स्थान का प्रमाण होता है। पहला अनुभाग स्थान है नहीं जघन्य, दूसरा यदि उसके पूर्व समय में बंधा हुआ, क्योंकि अनंत गुणा विशुद्धि होती है तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग बंध अनंत गुणा घटता है, इसलिए उसको अनंत गुणा द्वितीय समय ने द्विचरम समय में, उससे अनंत गुणा त्रिचरम समय में, ऐसे नीचे नीचे आ जाना। तो कहते कि इसमें से जघन्य स्थान को घटाकर, यानी यहाँ जितना अनुभाग है बंध है उसमें से जघन्य की संख्या माइनस करो, एक कम करने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है। जघन्य स्थान को घटाकर एक कम करने पर दोनों स्थानों का अंतर होता है, यानी उसमें अंतर कितना है, तो हम कहते ना कोई वहाँ 5 था और यहाँ 100 हो गया, तो अंतर कितना हुआ,
95
यहाँ क्या लिखते हैं 100 माइनस 5 माइनस 1 ऐसा उन्होंने किया,
96
इतना अंतर होता है। ये समझ में नहीं अंतर किसको कहना। वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर, वृद्धि स्पर्धक यानी उसमें कितने स्पर्धक बढ़े, डायरेक्ट अनुभाग की बात बताई उन्होंने कि वहाँ जितना अनुभाग और इतना अनुभाग है, पर इन दोनों में स्पर्धकों की संख्या कितनी बढ़ी, उसको कहेंगे वृद्धि स्पर्धक की शलाका। वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर, वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है, यानी जितनी जितनी स्पर्धक बढ़े, मान लेते हैं कि उसमें 10 स्पर्धक हुए, 10 स्पर्धक हुए और अनुभाग का डिफरेंस कितना पड़ा, हमने मान लेते हैं 96 का जो अनुभाग पड़ा, तो वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड करने पर वो 96 10 में बांट देके 9.6 हो जाएगा ना हर एक के, एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है। ये मैंने ऐसे ही आपको बताया है, अभी देखेंगे वो फिट बैठता है कि नहीं संदृष्टि। ये स्पर्धक वृद्धियां है क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाने वाला है। क्या कहना चाहते हैं, हमने जघन्य स्थान देखा था, जघन्य स्थान तो अंतिम वर्गणा के
अंतिम
एक वर्ग के अनुभाग को कहा था, परंतु वही जघन्य स्थान में जघन्य से लेकर वहां तक के स्पर्धक बहुत सारे थे। तो स्पर्धक की अपेक्षा बात करेंगे तो अभी जो दूसरा स्थान अनंत गुणा वाला है, तो ये अनंत गुणा वाले स्थान में भी चौथ कहाँ है, जघन्य जो हमने देखा था ना जघन्य स्थान, तो उसमें वो वर्गणा स्पर्धक वगैरह सब हमने देखे थे। ये अंतिम उसकी अंतिम स्पर्धक का अंतिम वर्गणा ये है। अब उसमें ये सारे स्पर्धक थे। अब यहाँ दूसरा जो स्थान हुआ, इससे यहाँ जितना अनुभाग है उससे अनंत गुणा वाला दूसरा स्थान हुआ। तो दूसरा स्थान केवल हमने डायरेक्ट अनुभाग कितना बढ़ा वो कहा, तो उसमें स्पर्धक कितने बढ़े, तो इसके आगे यहाँ पर भी जितना है उसमें भी स्पर्धक बढ़े ही ना, इतने वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं, तो इतने स्पर्धक और बढ़े। अनुभाग इसमें से इसको माइनस करो तो हमें अनुभाग का डिफरेंस मिला, परंतु यहाँ स्पर्धक कितने बढ़े तो उसका प्रमाण उन्होंने निकाला। यहाँ तो समझ में आई बात। अब देखें ये स्पर्धक वृद्धियां है, इसको कहते स्पर्धक वृद्धि, क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किए जाने वाला है। इसका अर्थ समझ में है, इतने स्पर्धक और यहाँ हो गए तब वो द्विचरम वाला स्थान वहाँ पाया जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं।
तो द्विचरम समय में जो उन्होंने परमाणु का ग्रहण किया वो सभी नए स्पर्धक रूप ही तैयार हो गए, इससे बता रहे
द्विचरम ये पूर्व में हो चुके थे, ये तो उल्टा नहीं जाना है।
नहीं बराबर आप भी बढ़ा
पहले देखो देखो पहले द्विचरम आया फिर चरम समय आया।
हाँ तो घात हुआ,
घात काहे का हुआ, बंद की बात है, घात के स्थानों की बात ही नहीं चल रही है।
अच्छा बंद नया हो रहा है,
पहले जो बंद हुआ था देखो श्रेणी चढ़ते समय पूर्व समय में, अभी ये यहाँ से हम बढ़ता रहे पर तो ये सारे नीचे से ऊपर तक हो गए कि नहीं। तो सूक्ष्म सांप्राय के उपांत समय में उसने इतना बंद किया था और अंतिम समय में बंद इतना हुआ, ये बंद की बात चल रही है, यह घात की बात नहीं हो रही है, वो घात की बात अलग से बताएंगे। बंद अनंत गुणा घटता चला जा रहा है ना, सत्व भी घट रहा है, अनुसमयापवर्तन जिसको कहेंगे, प्रति समय अनुभाग का घटना। पहले कांडकों में घटता था अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त, यहाँ तो प्रति समय घटता है, वो सत्व की बात है। और यहाँ बंद जो हो रहा है वो सत्व से कम ही हो रहा है नेचुरली, पूर्व समय में बंधा था नेक्स्ट समय उससे अनंत गुणा घटकर बंधा है, समझ में आई बात। अब यहाँ शंका पूछते हैं इनकी स्पर्धक संज्ञा कैसे है, समाधान, कारण कि चिर अनुभाग को छोड़कर युगपत वृद्धि को प्राप्त होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धक पना पाया जाता है। यानी पहले वाला अनुभाग छोड़कर युगपत कितने बढ़ गए तो उसके अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धक पना पाया जाता है। यहाँ प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है। ये प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि जो पहले हमने
अंतिम स्पर्धक के ऊपर
क्या क्या क्या
अंतिम स्पर्धक जो अंतिम समय में बनता था
हाँ
उसके ऊपर नहीं रखना है।
वही तो, परंतु देखो देखो क्या कहा, ये हम जघन्य से उल्टे क्रम से समझा रहे तो कहते प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर। देखो प्रथम एक अंक के प्रति का अर्थ क्या होता है बोलो,
जो जघन्य बंद हुआ था।
नहीं देखो देखो ऊपर के पैराग्राफ में ये बताए, वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है, समझ में आई बात। ये जो एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धक बताया है तो कहते हैं तो यहाँ कहते हैं युगपद वृद्धि को प्राप्त होकर, ये जो है ना यहाँ प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई सेकंड लाइन में लिखा है, ये कहाँ से आया, कौन सा अंक कहाँ से लेना है, तो ऊपर जो उन्होंने विरलन किया था, किसका किया था, वृद्धि स्पर्धकों का, नंबर ऑफ वृद्धि स्पर्धकों का विरलन किया और पूरा अनुभाग उसमें समखंड करके दिया, तो एक एक के प्रति जो प्रमाण आया उसको वृद्धि स्पर्धक कहेंगे। अभी ये एक अंक के प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि ने, ये राशि ऊपर जो विरलन किया था और उसके एक एक अंक के प्रति जो राशि आई थी उस राशि की बात करें, फिर दोबारा पढ़ेंगे पूरा तो ख्याल में। देखो ये प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई कौन सी राशि, जो अभी ऊपर विरलन करके निकाली थी वो, समझो ना अभी, हाँ अभी पूरा पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होगी। उसको राशि को जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है। देखो अभी इसका क्लैरिटी हो गई ना, देखो यहाँ क्या कहा, टोटल अनुभाग कितना बढ़ा जघन्य स्थान से उसके पूर्व समय में, तो कहते मान लेते इतना बढ़ा। अभी टोटल अनुभाग जितना बढ़ा हुआ अनुभाग डिवाइडेड बाय स्पर्धक नंबर ऑफ स्पर्धक शाला का, यानी जिसको नंबर ऑफ स्पर्धक कहेंगे, तो क्या हो गई, उसका विरलन करके उसको समखंड करके देने का अर्थ क्या होगा, टोटल जो अनुभाग का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बढ़ी हुई स्पर्धकों की संख्या, तो क्या मिलेगा, प्रतिस्पर्धक को अनुभाग मिलेगा। वो एक स्पर्धक इसके ऊपर रखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसका अर्थ होता है ये। ये अंतिम समय, ये उपांत समय है। हाँ ऊपर डिफरेंस है,
नहीं अभी मैंने क्या बताया,
बॉटम का सबका समान होगा ना,
हाँ,
यहाँ से गिन रहे हैं हम, तो यहाँ डिफरेंस स्थान इसको कहते हैं, डिफरेंस यहाँ होगा। अभी आगे क्या कहते हैं वो देखें, अभी तो दो स्थानों में ही चर्चा चल रही, जघन्य और सेकंड नंबर वाला।
सो अंतिम समय में जो स्पर्धक बने थे उससे उपांत समय में जो स्पर्धक बने वो अनंत गुणे हो जाएंगे,
नेचुरली
हो जाएंगे।
देखो देखो पूर्व अनुभागी अनंत गुणा था उसमें नंबर ऑफ स्पर्धक कहेंगे अभी उसकी संख्या कितनी होती, यहाँ तो नंबर ऑफ स्पर्धक कितने बने और एक एक स्पर्धक में कितना अनुभाग बढ़ा उसकी बात है। पहले टोटल पढ़ने तो दो फिर प्रश्न करो। देखो यहाँ प्रथम अंक के ऊपर रखी हुई राशि को जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के ऊपर रखने पर वृद्धि स्पर्धकों में से प्रथम स्पर्धक होता है, यानी बड़े ऊपर जो हमने देखा इसके ऊपर रखा, यहाँ तो इतने स्पर्धक थे इसके ऊपर वो बढ़ा, यहाँ एक अंक के ऊपर वाला विरलन वाला यहाँ रखा, तो ये यहाँ का पहला स्पर्धक। एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है, क्या कहा, स्पर्धक वृद्धि का प्रमाण निकाला ना हमने, टोटल नंबर ऑफ कितने स्पर्धक बढ़े वो हमने मान लेते ना, 10 पढ़े तो उसका अंतर कितना हुआ, 9 अंतर हुआ, समझ में आई बात, वृद्धि स्पर्धक 10 थे तो डिफरेंस उसमें 9 रहा। तो एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है, एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही अधस्तन और उपरी वर्गणाओं का अंतर होता है, क्या कहना चाहते हैं, अधस्तन वर्गणा और उपरी वर्गणा का अंतर अभी बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, यहाँ देख लिए ये अंतिम वर्गणा, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा, और यहाँ ये ऐसे करते करते यहाँ अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा, यहाँ क्या कहते हैं, देखो स्पर्धकों का अंतर बता दिया कि ये 10वां मान लेते हैं स्पर्धक, तो इसमें डिफरेंस 9 का हुआ, डिफरेंस 9 का हुआ, स्पर्धकों का अंतर तो 9 का हुआ। अब कहते वर्गणाओं का अंतर कितना होता है, तो एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही अधस्तन और उपरी वर्गणाओं का अंतर होता है, यानी स्पर्धक जितने बढ़े उसमें से एक स्पर्धक के वर्गणा को माइनस करो। अभी नंबर ऑफ स्पर्धक ज्यादा बढ़े और एक एक स्पर्धक में वर्गणा कम होगी तभी तो ये सब पॉसिबल है। नंबर ऑफ स्पर्धक कितने बढ़े हैं? 10 बढ़े मान लेते, परंतु एक एक स्पर्धक में वर्गणा हमने 2 या 3 ही मान लेते, तो क्या कह रहे हैं कि एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि अगर हम 3 मानते हैं तो वर्गणा एक स्पर्धक वर्गणा कितनी 3 है, तो वो स्पर्धक कितने बढ़े 10, तो उसमें से 3 माइनस करो, ये कहना चाहते हैं। वर्गणा को माइनस करो किसमें से, स्पर्धक वृद्धि में से, तो वर्गणा का डिफरेंस आता है, ये कह रहे हैं। देखो देखो, एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही अधस्तन और उपरिम वर्गणाओं का अंतर होता है। अब ये वर्गणा और ये वर्गणा,
ये समझते एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन,
एक स्पर्धक वर्गणा क्यों कम कर, या पहले
स्पर्धक वर्गणा लिया वो अंतिम समय
ये हो सकता है, यहाँ अगर लेना है हमको इसका अंतिम और इसका यहाँ का पहला अगर इसमें लेते हैं तो ये हो घटित हो सकता है, आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ ख्याल आ जाएगा, क्योंकि वर्गणाओं का अंतर इन्हें अंतिम से अंतिम लेना है क्या, कहाँ से कहाँ तक लेना, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ, पर उसको एक स्पर्धक वर्गणाओं से ही स्पर्धक वृद्धि लिया,
एक स्पर्धक वर्गणा में अंतिम समय में जितनी वर्गणा
था अधस्तन और उपरिम वर्गणाओं का अंतर होता है। नहीं नहीं देखो देखो, प्रथम स्पर्धक की बात है, एक कम प्रतियोगी प्रमाण स्पर्धकों का अंतर होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है बराबर, पहले आगे पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो कुछ क्लैरिटी हो जाएगी।
पर कुछ समझ में आता है?
नहीं नहीं, नहीं पूरा पैराग्राफ ही पहले पढ़ना पड़ेगा। हाँ देखो आगे बढ़ते, पुनः द्वितीय स्पर्धक को ग्रहण कर, क्योंकि हमने विरलन किया था और एक एक के प्रति हमको एक एक स्पर्धक मिला था, पहला स्पर्धक हमने रख दिया, अब कहते दूसरी द्वितीय स्पर्धक को ग्रहण कर, प्रक्षेप सूत्र प्रथम स्पर्धक को प्रतिराशि करके उसमें मिलाने पर द्वितीय स्पर्धक होता है, यानी स्पर्धक पहले स्पर्धक में उसको मिलाया तो दूसरा स्पर्धक हो गया, एक कम वृद्धि उक्त स्पर्धकों का अंतर होती है, वो एक एक स्पर्धक में अंतर कह रहे हैं, पहला स्पर्धक। हाँ एक कम वृद्धि उक्त स्पर्धकों का, पहले कितना बताया था स्पर्धक, एक कम स्पर्धक वृद्धि प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है, यहाँ पर भी यही वही बता रहे, एक कम वृद्धि उक्त स्पर्धकों का अंतर होती है।
एक स्पर्धक में भर रहा है,
पूरे पढ़ने दो मुझे क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रहा है ना, तो हम फिर दोबारा पढ़ेंगे इसको, आप फिर प्रश्न पूछना, जरूर पूछना। देखो यहाँ तो वही बात उन्होंने पहले जघन्य स्थान के ऊपर बताया, यही एक और दूसरे स्पर्धक में बता रहे, तो ये क्या कहना चाहते, थोड़ा क्लैरिटी अभी नहीं हुई है। देखो 119 पेज पर पढ़ेंगे, एक कम वृद्धि उक्त स्पर्धकों का अंतर होते ये भी पढ़ा हमने, एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही वृद्धि उपरिम और अधस्तन स्पर्धकों की जघन्य एवं उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होती है। यहाँ कुछ क्लियर बताया उन्होंने, अधस्तन स्पर्धकों की जघन्य एवं उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होती है, यानी हर जगह एक कम वृद्धिंगत द्रव्य जो है दोनों स्पर्धकों का अंतर बताया है, और एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही जघन्य व उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होता है। अच्छा, एक एक स्पर्धक के वर्गणाओं का अंतर बता रहे वो, जघन्य स्थान की वर्गणाओं से कुछ नहीं लेना देना। फिर से देखो, पहले उन्होंने क्या किया, जितना अनुभाग बढ़ा और उसमें जितने स्पर्धक हुए उसका विरलन किया, और जितना टोटल अनुभाग बढ़ा उसको उसमें समखंड करके दे दिया। तो एक एक के प्रति एक एक स्पर्धक मिला। अब एक अंक के प्रति जो स्पर्धक है वो यहाँ रखा। अब इससे और वो ऊपर वाले का डिफरेंस नहीं देख रहे थे, मैंने बोला मुझे जरा क्लैरिटी नहीं हुई थी। एक स्पर्धक रखा है तो एक स्पर्धक की बात है, तो एक स्पर्धक रखा है तो उसमें हमने पहले देखा था, पहला स्पर्धक जो होता है तो वो एक कम वृद्धि स्पर्धक प्रमाण उन स्पर्धकों का अंतर होता है। अब स्पर्धकों का अंतर किसको कहना है, ये स्पर्धक और ये स्पर्धक, इसमें अंतर शायद बता रहे, क्योंकि जब दूसरा स्पर्धक बनाएंगे तो उनका स्पर्धक का अंतर बताया। स्पर्धकों का अंतर ये हो सकता है कि अंतिम वर्गणा से इसके पहली वर्गणा में कितना अंतर है उसको भी कह सकते हैं हम, अब वो भी अभी क्लियर नहीं, परंतु वर्गणा का अंतर अभी क्लियर हो गया है। यहाँ क्या कहते हैं, पेज नंबर 118, वो समाधान वाले पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन, दो लाइन यानी नीचे से पेज नंबर के नीचे से तीसरी लाइन, एक स्पर्धक वर्गणाओं से हीन स्पर्धक वृद्धि ही, स्पर्धक वृद्धि ने एक जो स्पर्धक है उसकी बात, एक स्पर्धक का जो प्रमाण है उसी को स्पर्धक वृद्धि कहा, वही अधस्तन ऊपरी वर्गणाओं का अंतर होता है। हाँ, ये अधस्तन और ऊपरी उसमें वर्गणाओं में अंतर कितना है, तो एक कम जितना वर्गणाओं का प्रमाण है उतना है, ये कहने चाहते हैं। स्पर्धक वर्गणाओं से ही स्पर्धक वृद्धि, ये जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में इतना अंतर है। अब जो दूसरा स्पर्धक इसके ऊपर रखा, अब फिर यहाँ प्रश्न है, दूसरा यहाँ रखा तो 119 पेज पर, एक कम वृद्धि उक्त स्पर्धकों का अंतर होती है, इस स्पर्धक का अनुभाग इसमें एक कम वृद्धि, जो वृद्धि का प्रमाण जो बताया उन्होंने, और एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही वृद्धि उपरिम और अधस्तन स्पर्धकों की जघन्य एवं उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होती है। अभी इसमें डिफरेंस कितना है उसका अंतर बता रहे, इसमें बीच में वर्गणाओं का अंतर बता रहे, यानी हर स्पर्धक रखेंगे तो हर में यही बात उन्होंने बता रही। फिर से आगे पूरा पढ़ेंगे, फिर पूरा पैराग्राफ देखो,
तीसरी वर्गणा का प्रमाण तो समान ही होता है ना।
हाँ, क्योंकि वही है, एक कम वृद्धि उक्त स्पर्धकों का अंतर होती है। अब फिर तीसरे के बाद पढ़ेंगे, तृतीय स्पर्धक को ग्रहण कर द्वितीय स्पर्धक को प्रतिराशि करके उसमें मिलाने पर तृतीय स्पर्धक होता है, यानी जितनी वृद्धि होती है उसमें मिलाते चले जाओ, एक एक प्रक्षेप वृद्धि निकाली। एक कम वृद्धिंगत द्रव्य, दोनों स्पर्धकों का अंतर होता है। एक स्पर्धक की वर्गणाओं से हीन वही जघन्य व उत्कृष्ट वर्गणाओं का अंतर होता है। इस प्रकार विरलन राशि के चरम अंक के प्रति प्राप्त राशि को द्विचरम स्पर्धक में मिलाने पर द्वितीय स्थान और अंतिम स्पर्धक के उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए, यानी जो हमने देखा था इतने एक स्पर्धक दो स्पर्धक तीन स्पर्धक जितने बढ़ने थे वो हमने विरलन अंक के प्रति लिखे थे, वो एक एक स्पर्धक यहाँ बढ़ाते गए, तो ये द्विचरम जो स्थान उसके अंतिम स्पर्धक तक हम गए। स्पर्धक ही उसको कहा कि युगपत जितनी वृद्धि हो, एक एक की जो वृद्धि होती है उसको स्पर्धक कहा था। देखो, यहाँ द्वितीय स्थान और उसका ही अंतिम स्पर्धक एक नहीं हो सकते, क्योंकि अंतिम अंक के प्रति प्राप्त वृद्धि से युगपत वृद्धिंगत होकर क्रमवृद्धि को प्राप्त अनुभाग की वृद्धि को प्राधान्य पद में स्पर्धक स्वीकार किया गया है, तथा द्विचरम स्पर्धक के साथ अंतिम वृद्धि को स्थान स्वीकार किया गया है।
ये नहीं समझ रहा है, देखो द्वितीय स्थान और उसका ही अंतिम स्पर्धक एक नहीं हो सकता,
पूरा स्पर्धक एक नहीं हो सकता। स्थान किसको कहेंगे? अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक परमाणु को। और स्पर्धक किसको कहेंगे? जो अनुभाग बढ़ता हुआ चला जाता है ना, जैसे हमने 100, 102, 103 इस तरह से बढ़ता हुआ जो है, उसका एक एक परमाणु का जो बढ़ता हुआ उसको स्पर्धक कहा। वर्गणाओं का समूह, ने पूरी वर्गणा नहीं लेनी है, वर्गणा का एक वर्ग का अविभाग प्रतिच्छेद लेना, उसकी बात है वहां पर, उसको स्पर्धक कहा उन्होंने। यानी कहा क्रम वृद्धि को प्राप्त प्राधान्य पद में स्पर्धक स्वीकार किया गया। स्पर्धक किसको कहा? जहां तक क्रम से वृद्धि है, एक एक अनुभाग, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद, वहां तक स्पर्धक कहा। उसके बाद बीच में अंतर होता है, फिर दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाता है। समझ में आई बात?
ये मेरे नहीं समझ गया, द्वितीय स्थान और उनका ही अंतिम स्पर्धक एक नहीं हो सकता।
अंतिम स्पर्धक किसको कहेंगे? देखो अंतिम स्पर्धक हम किसको कहेंगे? इसको यहाँ पर ये जो कोई यहाँ स्पर्धक हो गए,
हाँ।
अंतिम स्पर्धक यानी यहाँ जो एक वर्गना, दूसरी वर्गना, तीसरी वर्गना, चौथी वर्गना,
हाँ।
ये कैसे एक एक से बढ़ते हुए सब है,
हाँ।
वो सब एक एक से बढ़ते हुए सबको मिलकर स्पर्धक संज्ञा है। और स्थान संज्ञा अंतिम वर्गना के एक परमाणु का जो अनुभाग है उसको स्थान कहेंगे। ये क्रम वृद्धि वाला जो है उसको स्पर्धक कहा। क्रम वृद्धि से प्राप्त जो बीच में अंतर पड़ता है, पहले क्रम वृद्धि होती है, फिर अंतर पड़ता है, फिर क्रम वृद्धि होती है, फिर अंतर पड़ता है, फिर क्रम वृद्धि अंतर पड़ता है, उसी को तो इतने स्पर्धक बने ये कहा। देखो यहाँ वृद्धि स्पर्धक जो कहा, स्पर्धक बढ़े इतने कहा, उसका अर्थ ही क्या है? वर्गणा वर्गणा प्रति एक एक अनुभाग बढ़ता है ना, एक एक परमाणु के प्रति बढ़ता है वैसे, तो ये क्रम वृद्धि, फिर अंतर, फिर क्रम वृद्धि, फिर अंतर, फिर क्रम वृद्धि, इसी का नाम स्पर्धक है। तो अभी अभी समाधान की पहली लाइन पेज नंबर 118 की देखो। देखो चिर अनुभाग को छोड़कर, यानी पहले वाला अनुभाग छोड़कर, युगपद वृद्धि को प्राप्त होकर क्रम वृद्धि को प्राप्त अनुभाग की वृद्धि के ही स्पर्धकपना पाया जाता है। स्पर्धकपना किसको कहा?
क्रम से वहां पर
पहला वाला अनुभाग छोड़कर, अभी हम नया स्पर्धक की बात कर रहे हैं, तो उसमें युगपद बढ़ा परंतु वो क्रम वृद्धि को प्राप्त जो है, एक एक वर्गणा प्रति एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा, इसको क्रम वृद्धि कहा। और जहाँ ऐसा पाया जाता है वहाँ उसको स्पर्धक कहेंगे। ये बात ख्याल में? ये स्पर्धक कहने से वो बढ़ते हुए सभी अनुभागों को वहां लेकर उसकी टोटल उसको स्पर्धक कहेंगे। जैसे हमने 100, 101, 102, 103 ये सब मिलकर स्पर्धक होगा। इसे 200, 201, 202, 203 वो सब मिलकर स्पर्धक होगा, उसको स्पर्धक संज्ञा है। यानी वो क्रम से बढ़ती हुई चाहिए, क्रम से बढ़ता हुआ अनुभाग वाला चाहिए। अब यही बात यहाँ पूछ रहे प्रश्न फिर 119 पर, जो शंका है ना, यदि ऐसा है तो वृद्धि का प्रक्षेप करने पर स्पर्धक होता है, ये है बीच में गायब हो गया, यह कथन कैसे घटित होगा? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संयोग स्वरूप से पहले उत्पन्न हुए स्पर्धक की भी कथनचित उत्पत्ति स्वीकार की गई है। क्या कहना चाहते हैं? अब कहते हैं ये वृद्धि होगी, प्रक्षेप हुआ ना, वृद्धि होगी तभी उसको स्पर्धक कहेंगे। तो ये तो ऐसा नहीं है, पहले से नीचे से जो हम स्पर्धक कहे आए, जहां जहां ये क्रम वृद्धि होती वहां वह स्पर्धक कहते हैं, यानी पहले से जो वहां स्थित है उसको भी स्पर्धक कहेंगे। अकेले वृद्धि होकर ही स्पर्धक होगा ऐसा नहीं है,
पूर्व में बदले हुए,
हाँ पूर्व में जो पड़े है उसको भी स्पर्धक ही कहे जाते। इस द्वितीय स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतरों से अनंत गुणे हैं। यानी अंतर यानी मुझे लगता है ये इसका अंतर यानी जघन्य स्पर्धक से उत्कृष्ट स्पर्धक का अंतर उसको अंतर होगा ये शायद और उससे अनंत गुणा इसका अंतर है। अभी देखते हैं किसको क्या कहेंगे स्पर्धकों का अंतर में क्या बता रहे हैं। देखो द्वितीय स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतरों से अनंत गुणे हैं तो गुणकार क्या है तो वह सब जीवों से अनंत गुणा है। यथा अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक शलाकाओं का जघन्य स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक होता है। क्या कहते हैं ये जघन्य स्थान यानी इसका अंतिम अनुभाग कहते ये जो अनंत जो संख्या है भाग मात्र जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकशाला का यानी नंबर ऑफ शाला का नंबर ऑफ स्पर्धक जघन्य स्थान में कितने तो अनंत है। उस अनंत का इस स्थान यानी अविभाग प्रतिच्छेद को भाग दो नंबर ऑफ स्पर्धकों का इस अनुभाग को भाग दो। मान लेते ना यहाँ 10 स्पर्धक थे और अनुभाग यहाँ 10,000 था अंत में तो कहते कि जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक शलाकाओं का जघन्य स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक होता है तो एक स्पर्धक की वैल्यू आ जाएगी
1000।
अब क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। अब कहते हैं उसमें से एक कम करने पर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों का अंतर होता है। उसमें से कम करने पर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों का अंतर होता है। किसमें से कम करने पर 1000 में से ना वो नहीं कह रहे हैं। देखो पहले अनंत जो स्पर्धक शाला का है उसके जघन्य स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक होता है उसमें से एक कम करने पर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों का अंतर किसको कहना है।
हमने स्पर्धकों का अंतर अभव्य से अनंत गुणा और सिद्धों
वो सब जगह वही बात आता है सबके लिए अनंत ही संख्या है
अनंत गुणा होता जा रहा है
बरोबर है पर ये कैसे निकाला उन्होंने एक किसमें कम करना 9 आ गए 9 अंतर हो जाता है। फिर से देखो अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक शलाकाओं का जघन्य स्थान में भाग देने पर एक स्पर्धक होता है। एक स्पर्धक आया उसमें से एक कम करने पर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों का अंतर होता है।
स्पर्धकों का अंतर जहाँ पे वो गेट पड़ता है वो बनकर देख रहे हैं।
देखो एक स्पर्धक का प्रमाण हमने 1000 निकाला तो ऐसे 10 स्पर्धक हैं तो स्पर्धकों का अंतर किसको कहेंगे। यानी
अंतर जो ये अनुभाग की अपेक्षा जो अंतर पड़ता है उसकी बात तो नहीं है ना
वही तो लेना है। देखो आगे फिर पढ़ते फिर द्वितीय स्थान की वृद्धि को वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं से खंडित करने पर स्पर्धक होता है। उसमें से एक कम करने पर स्पर्धकों का अंतर होता है। यानी स्पर्धक में से एक कम करो तो स्पर्धकों का अंतर बता रहे हैं। पहले फिर पीछे चलते हैं। स्पर्धकों का अंतर किसको कहना, पीछे आगे कहीं तो ये बात आनी चाहिए, क्योंकि ये चूली का है ना, कहीं आगे या पीछे उसका आगे आना चाहिए। देखो पेज नंबर 46, ये स्पर्धक प्ररूपणा किस लिए की जा रही है वो बात आई ना, तो वहां जाके वो यहाँ बताया नहीं है, तो स्थान की स्पर्धक प्ररूपना किस लिए की जा रही है, देखो वहां से पढ़ते जरा 146 देखते वहां क्या लिखा है। इसकी स्पर्धक संज्ञा कैसे है, यह पर भी देखो पेज नंबर 145 पर
स्पर्धकों का अंतर यहाँ पे भी है।
देखो उसके लिए 144 पर वहाँ शंका के पहले कुछ लिखा है, देखो सब जीवराशि का विरलन कर जघन्य स्थान संज्ञा वाले एक परमाणु अविभाग को समखंड करके देने पर प्रत्येक अंग के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है, उनमें एक प्रक्षेप को ग्रहण कर जघन्य स्थान को प्रतिराशि करके उसमें मिलाने पर अनंत भाग वृद्धि का द्वितीय स्थान होता है। ये अनंत भाग वृद्धि वाली कुछ बातें आगे चलकर बता रहे हैं, परंतु कहते कि जिस किसी भी प्रक्षेप में अनंत स्पर्धक होने चाहिए, परंतु यहाँ एक भी स्पर्धक नहीं है, यहाँ भी अनंत स्पर्धक पाए जाते। यथा प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं का विरलन कर प्रक्षेप को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति एक एक स्पर्धक का प्रमाण प्राप्त होता है, वही जो हमने वहां देखा था, वहां यही प्रश्न था, इसकी स्पर्धक संज्ञा कैसे, वहां पर भी यही पूछा था, तो कहते अंतर करके क्रम से वृद्धि को प्राप्त हुए सांतर अविभाग प्रतिच्छेदों को स्पर्धक कहा जाता है, इसी कारण यहाँ एक अंक के प्रति प्राप्त राशि की स्पर्धक संज्ञा, जैसे हमने विरलन किया और उसमें वो अनुभाग बांट दिया तो उसको स्पर्धक कहा था, उसमें से एक अंक कम कर देने पर स्पर्धकों का अंतर होता है। क्या कहा, यानी हमने देखा ना एक राशि के प्रति कितना आया उसको कहा तो स्पर्धक, उसमें से एक कम करो तो अंतर कहा, जैसे हमने 10 स्पर्धक माने और उसमें वो तो एक के प्रति 1000 है तो स्पर्धक का अंतर 900 हुआ, ये कह रहे 999
पर वहाँ पे एक कम करके बता रहे
हैं, एक कम उसी में से 1000 में से एक कम किया हमने, ये कुछ बातें हैं। देखो यहाँ एक स्पर्धक में अपनी वर्गना शलाकाओं से कम सब जीवों सब समस्त आकाश तथा सब पुद्गलों से भी अनंत गुणे मात्र अविभाग प्रतिच्छेद वर्गनाओं के अंतर होते हैं।
ये अंतर बहुत बड़ा पता है,
अभिप्राय है कि इन अविभाग प्रतिच्छेदों से जघन्य स्थान से उत्तरोत्तर एक एक अधिक क्रम से युक्त परमाणु तीनों ही कालों में सब जीवों में नहीं है, इतना अंतर पड़ा ना, यानी अनंत गुणा का डिफरेंस पड़ा था ना, तो इतना अनंत गुणा का डिफरेंस पड़ा, तो तीन काल में कौन उस अनुभाग वाले कोई परमाणु नहीं पाए जाते, ये उसका अर्थ होता है। वर्गणांतर से एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से अधिक अनुभाग का नाम प्रथम स्वर्धक की आदि वर्गणा है, जहां से एक एक से बढ़ना शुरू होता है उसको आदि वर्गणा कहेंगे, उससे लेकर निरंतर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की अधिकता से क्रम से वर्गणा में जाकर प्रथम स्वर्धक की अंतिम वर्गणा होती। हमेशा हमने देखा था एक एक से बढ़ते हुए जहां तक है उसको वर्गणा वर्गणा कहेंगे। वर्गणा संज्ञा वाले अविभाग प्रतिच्छेदों के आधारभूत परमाणु है, यह उसका अभिप्राय है। प्रक्षेप के इस जघन्य स्पर्धक को प्रतिराशि करके उसमें द्वितीय अंक के प्रति प्राप्त राशि को मिलाने पर द्वितीय स्पर्धक होता है। हाँ देखो, पहले की बात फिर पढ़ते वहां चले जाते हैं, कुछ तो कन्फ्यूजन है अभी भी,
नहीं समझ में आ रहा,
क्लियर नहीं हो रहा है, बात सही है। अपना पेज नंबर वहां चले जाते पहले, फिर वहां से ही पढ़ेंगे। कहाँ थे?
120 पे आ गए थे।
हाँ, 120 पर आए थे। यानी यहाँ स्पर्धक का कुछ अलग, यानी जो हमने, क्योंकि हमने जघन्य से शुरुआत किया था और वहां तक पहुंचे थे,
और अंतर भी हमने सभी स्पर्धकों में, अरे प्रतिस्पर्धक समान ही देखा है ना,
वो अंतर अलग है,
तो यहाँ पे वो अंतर की बात ही
नहीं, 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 उसकी बात नहीं है। हाँ, अलग अलग स्थानों का अंतर अलग अलग होना चाहिए, ये ही लगता है। उन्होंने पहला बताया था जघन्य स्थान को छोड़कर वो अंतर असमान होता है ऐसा।
तो जो हम लोग ने अभी तक समझा था वो गलत,
नहीं नहीं, एक स्थान में उसका अंतर, वो अंतर अलग है,
एक स्पर्धक
एक स्थान में एक स्थान का अंतर अलग है।
अच्छा, दूसरा स्थान जब भी,
हाँ वही तो, क्योंकि वो स्पर्धक नाम ही उसको अलग से दे रहे हैं, जितनी वहाँ जो अनुभाग बढ़ा और उतने जितने स्पर्धक बने उसको वो स्पर्धक संज्ञा अलग को दे दी। जैसे अभी उन्होंने बताया ना, जैसे एक, हाँ उसमें कुछ मिलता है क्या, देख लो, क्लैरिटी तो नहीं हो रही है स्पर्धक की और उसकी।
तो यहाँ पे एक से समझ लेना चाहिए कि जगन्नाथ स्थान में जो स्पर्धक का अंतर है वो दूसरे स्थान में, उपान समय में जो स्पर्धक का अंतर होता है वो बढ़ जाता है, इसे बता रहे
हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, ये तो अलग अलग जगह अलग लेने, अनंत भाग वृद्धि वाला, असंख्यात भाग वृद्धि वाला, ऐसे अलग अलग बता रहे हैं वो सब स्थान, उसमें उसका प्रमाण अलग होगा, उसमें अंतर का प्रमाण अलग अलग है। जहाँ वृद्धियाँ अलग अलग है उसमें अंतर का प्रमाण अलग अलग है। अभी अंतर जो हम सोच रहे हैं अंतर, वो बात अलग है और ये अंतर अलग है। अंतर किसको कहा उन्होंने, स्पर्धक का अंतर, जैसे मैंने मान लेते 1000 निकाला तो 999 उसको अंतर बताया है, ये बात अलग है। यानी वो वर्गणा और ऊपर की वर्गणा उसके अंतर को यह अंतर नहीं कह रहे हैं।
जगत स्थान में जो उत्कृष्ट अनुभव वाला जो वर्गणा थी उससे जो द्वितीय सोपान समय में जो वर्गणा का अंतर वो बता रहे,
उसको भी नहीं कहेंगे, स्पर्धक का अंतर कुछ अलग कह रहे हैं। उसमें मिला आपको? जब तक ये नहीं क्लियर होगा ना तो आगे की बातें नहीं आएगी। देखो अभी जरा फिर से देखना पड़ेगा इसको। एक बार ये बीच वाला क्लियर हो जाएगा ना, स्पर्धक और अंतर किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। ये प्रदेश प्ररूपणा के पहले
कि हमने आगे भी देख के आए होंगे ना अंतर किसको कहते हैं।
देखो पेज नंबर 114 पर अंतर प्ररूपणा है ना, एक एक स्थान का अंतर कितना है। देखो ये नीचे वाली शंका देख लो 114 पेज पर, स्थानांतर किसको कहते हैं। तो ऊपरी स्थानों में से अधस्थ स्थान को घटाकर एक कम करने पर जो प्राप्त हो स्थानों का अंतर है। मैंने वो दो अनुभाग था उसका और ये पहले वाले का जो अनुभाग है ना ऊपर वाला जो था माइनस करके, हाँ वो अंतर हुआ।
हाँ।
वो तो स्थान का अंतर समझ में आया, अब यहाँ कह रहे स्पर्धक का अंतर। ख्याल में आई ना बात? अब स्पर्धक के अंतर में जो उन्होंने बताया जितने अनुभाग बढ़ा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पर्धक हुए, वो एक एक स्पर्धक की वैल्यू निकाली, उसमें से एक कम करो तो स्पर्धक का अंतर बता रहे। यानी वो क्लैरिटी अभी भी नहीं हो रही है। हाँ आगे पढ़ते जाएंगे तो ही कुछ क्लैरिटी होने वाली है, अभी कुछ काल तक बिना समझे ही पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे लब्धिसार हम पहले बार ऐसे पढ़ते ही चले जाते थे, कुछ नहीं समझता था, बाद में उसका क्लैरिटी होती गई। यहाँ पर भी थोड़ा ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा पढ़ लेते आगे, देखो थोड़ा क्लैरिटी होगी तो फिर हम दोबारा ये विषय को ले लेंगे। देखो यहाँ तक आए थे ना, 120 पेज पर आए थे,
पहली लाइन से पढ़ लेते हैं,
फिर पढ़ें। फिर द्वितीय स्थान की वृद्धि को वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं से खंडित करने पर स्पर्धक होता है। हमने वो देखा था, क्या कहा? द्वितीय स्थान की वृद्धि, हमने देखा अनंत गुणा वृद्धि होती है, जो वृद्धि हुई उसको वृद्धि स्पर्धक शलाकाएं, जितने नंबर ऑफ शलाका स्पर्धक बने उससे भाग देने पर स्पर्धक होता है। ये तो बात उन्होंने पहले ही बताई थी, वो विरलन के द्वारा बताए थे 118 पेज पर। निकालो 118 पेज, वो जो नया पैराग्राफ है ना उसकी चौथी तीसरी लाइन, वहां पर भी वो विरलन के द्वारा यही समझाना चाहते थे, वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं का विरलन करके वृद्धिंगत अनुभाग को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति वृद्धि स्पर्धकों का प्रमाण होता है। यानी ये स्पर्धक वृद्धियां हैं, क्योंकि जघन्य स्थान के अंतिम स्पर्धक के ऊपर इनका प्रक्षेप किया जाने वाला है। अब यहाँ फिर बढ़ते 120 पेज पर, द्वितीय स्थान की वृद्धि को द्वितीय स्थान की वृद्धि को वृद्धि स्पर्धक शलाकाओं से खंडित करने पर स्पर्धक होता है। वहां पर भी उसी को स्पर्धक कहा था क्योंकि उसका उसमें प्रक्षेप किया जाने वाला है। अब कहते उसमें से एक कम करने पर स्पर्धकों का अंतर होता है, यानी स्पर्धक की जो वैल्यू आई उसमें से एक कम किया तो स्पर्धकों का अंतर हुआ। जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक का द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक में भाग देने पर सब जीवों से अनंत गुना गुणकार आता है। देखो क्या कहना पड़ते हैं, जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक और द्वितीय स्थान संबंधी स्पर्धक वृद्धि, वृद्धि स्पर्धक यानी बढ़े हुए स्पर्धक, यानी वहां अनुभाग एक एक स्पर्धक का बहुत ज्यादा होगा, ये कहना चाहते हैं। यहाँ ओरिजिनल स्पर्धक और वहाँ वृद्धि स्पर्धक, पहले नहीं जघन्य स्थान के स्पर्धक और वहाँ वाले वृद्धि स्पर्धक, एक एक स्पर्धक की वैल्यू कितनी आई, टोटल जितना अनुभाग बढ़ा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो वृद्धि स्पर्धक हुए, हमने देखा ना 10,000 बढ़ा अनुभाग, डिफरेंस 10,000 का और उसमें 10 स्पर्धक बने, तो एक वृद्धि स्पर्धक के एक स्पर्धक की वैल्यू 1,000 हुई, यही कह रहे।
इससे समझ सकते हैं पहले जगह स्थान में 100 स्पर्धक थे, वो 5 समय में जो बंद हुआ पे वहाँ पे 1,000 स्पर्धक बने, तो 900 स्पर्धक
केवल स्पर्धक बने ऐसा नहीं, उसके एक एक स्पर्धक की वैल्यू भी बढ़ी है, ऐसा है।
एक एक स्पर्धक में अभिपात प्रतिशत की वैल्यू बता रहे
हैं नेचुरली ना,
वो तो अंतर होके होता है
बढ़ना
तो
ही,
तो
है,
बढ़ रही है।
अब देखो अभी उसके आगे भी पढ़ेंगे, जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धक का द्वितीय स्थान संबंधी वृद्धि स्पर्धक में भाग देने पर, यानी जघन्य स्थान संबंधी जो स्पर्धक थे, हाँ अंत में जो बंदे थे वहां जो स्पर्धक तैयार थे, अभी जो वृद्धि वाले स्पर्धक है, अभी हमने जिसको 1,000 माना था स्पर्धक का वैल्यू, और पहले जो उसकी जो अंतिम समय में जो थी, तो उस एक स्पर्धक का उस एक स्पर्धक में भाग देंगे, सब जीवों से अनंत गुना गुणकार आता है, यानी उसके हाँ पूरे स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद में भी इतना अंतर हो जाए। हाँ ये तो कुछ, क्योंकि वहां से जो शुरू होता है और उसके अंत तक, क्योंकि वहां एक एक स्पर्धक की वैल्यू उतने एक एक 1,000 ली, और पूर्व स्पर्धक की मान लेते 10-10 होगी जो कुछ है, ये कहना चाहते हैं। अब यहाँ तक तो इतनी बात क्लियर हुई, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अंत एक ही स्पर्धक नहीं, प्रत्येक स्पर्धक की जो कुछ, प्रत्येक स्पर्धक की कुछ वैल्यू बता रहे हैं, वृद्धि स्पर्धक की एक एक की वैल्यू समान निकाली हमने, हर एक की वैल्यू समान निकाली है, क्रम से कितनी वृद्धि हुई है इसको समान तो मैं ले लेती हूँ। इसी प्रकार स्पर्धकों के अंतर का भी गुणकार सिद्ध करना चाहिए, वर्गणा का प्रमाण लेना है क्या, हो सकता है हाँ
सर, हमने तो आगे तो इससे देखा था ना कि सभी जगह वर्गणा हो से एक स्पर्धक के दूसरी वर्गणा के हर दूसरे स्पर्धक पे वर्गणा में जो अंतर होता है वो तो समान ही होता है।
हाँ, एक स्थान में समान होगा, अभी स्पर्धक को ही जो कहते हैं उसकी वर्गणाओं का प्रमाण शायद वो पूरे स्थान में कुछ अलग हो सकता है।
तो प्रति जो अनुभव करे बंधक के अपेक्षा हम लोग स्थान देख रहे हैं,
हाँ,
वहाँ पे अंतर का प्रमाण अलग अलग होता है।
हाँ, अभी वो तो बताएंगे, अभी जो अनंत षट स्थानों की बात करेंगे ना वहाँ वो बताएंगे। पहले एक वाक्य आया था कि जो अंतर असमान होता है अंतिम स्थान को छोड़कर, ये शब्द आया था। हाँ देखो हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार पेज नंबर 120, सूक्ष्म सांप्रायिक के त्रिचरम समय से लेकर जो बंध स्थान है, बंध स्थान की बात है ना, एक समय में जो बनते हैं उसके, उन सभी के स्पर्धकों की रचना इसी प्रकार करना चाहिए। विशेष इतना है कि द्वितीय बंध स्थान से तृतीय बंध स्थान अनंत गुना है, क्योंकि उसका अविभाग प्रतिच्छेद, बंध स्थान किसको कहेंगे, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद। तृतीय से चतुर्थ बंध स्थान अनंत गुना है, इस प्रकार अनंत गुणित श्रेणी से यानी अनंत गुणा अनंत गुणा, हम नीचे नीचे उल्टे क्रम से बता रहे, सूक्ष्म सांप्राय और अनिवृत्तिकरण क्षपक कालों में ले जाना चाहिए। उल्टा ने पूरे सूक्ष्म सांप्राय के असंख्यात समय और फिर नीचे अनिवृत्तिकरण के असंख्यात समय, पुनः इन बंध स्थानों में अधस्थन स्थान के अंतर से उपरीम स्थान का अंतर अनंत गुणा है।
कभी कभी स्थान का अंतर ले रहे, कभी कभी स्पर्धक का अंतर ले रहे।
हाँ, अभी तो स्थान का अंतर चल रहा है, स्थान में अविभाग प्रतिच्छेद टोटल, उसका बंध स्थान किसको कहेंगे, अंतिम जो उसका है, उसका जो है उसको बंध स्थान कह रहे, उसी की बात है। तथा अधस्थन स्थान के स्पर्धकों के अंतर से भी उपरीम स्थान के स्पर्धकों का अंतर अनंत गुणा है, क्योंकि वह अनंत गुणित श्रेणी से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ये कहना चाहते हैं। ये तो स्थानों का अंतर और ये स्पर्धकों का अंतर, स्पर्धकों का है उस स्थान के स्पर्धक और इस स्थान के स्पर्धक, एक स्पर्धक का जो एक एक स्पर्धक एक पर्टिकुलर स्थान में स्पर्धक स्पर्धक समान हो,
सब चरम समय में जो स्थान का अरे स्पर्धकों का अंतर था
उससे द्विचरम वाले
में स्पर्धकों का अंतर अनंत गुणा हो गया।
हाँ, अनंत गुणा,
अनंत गुणा हो गया।
हाँ, यही तो कह रहे हैं। वो गुणकार की भी बात उन्होंने अभी बताई थी ना, देखो देखो 119 पेज पर लास्ट लाइन, पेज नंबर 119 लास्ट लाइन, द्वितीय स्थान संबंधी लास्ट पैराग्राफ, द्वितीय स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतर जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों के अंतरों से अनंत गुणे हैं,
वो
सब जीवों से अनंत गुणे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो थोड़ा पढ़ेंगे ना तो ये क्या कहना चाहते ये क्लैरिटी होने वाली है। ये हो गया ना, अभी नीचे से संयम के अभिमुख, संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञानावरण के जघन्य स्थितिबंध के योग्य स्थितिबंध लिया असंख्यात लोकमात्र विशुद्धि स्थान है, फिर उनमें क्या कहना चाहते हैं, ये कौन सा लिया सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि
अंतिम अंतिम स्थिति,
वो स्थितिबंध की बात, स्थितिबंध के योग्य कारणभूत परिणाम
असंख्यात लोग
पहले से सातवें में जाने वाले, उसको विशुद्ध स्थान कहा था। फिर उनमें असंख्यात लोक मात्र उत्तर कारणों की सहायता युक्त उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के विशुद्धि स्थान असंख्यात लोक मात्र है।
सब यहाँ पे एक विशुद्धि स्थान के लिए असंख्यात लोक परिणाम बताए,
देखो हमने देखा था जघन्य स्थिति बंध एक पर्टिकुलर है वहाँ का जघन्य स्थिति बंध, उसके कारणभूत परिणाम जो असंख्यात लोक हो गए विशुद्धि के स्थान, और उसके साथ अनुभाग के स्थान असंख्यात लोक गुना असंख्यात लोक हो गए, बराबर यहाँ तक। फिर इसको पैराग्राफ को पढ़ते हूँ, संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञानावरण के जघन्य स्थिति बंध के योग्य, वो जीव लिया वहां जितना जघन्य स्थिति बंध करता है, असंख्यात लोकमात्र विशुद्धि स्थान है, यानी अलग अलग इतने परिणाम उतने जघन्य स्थिति को बांध सकते हैं। हमने देखा था ना स्थिति बंध अध्यवसान स्थानों में, हमने देखा था एक पर्टिकुलर जो समय की जो बंधने वाला है स्थिति बंध का एक पर्टिकुलर समय, उसके कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक, उसके साथ बता रहे फिर उनमें असंख्यात लोक मात्र उत्तर कारणों की सहायता युक्त, यानी अन्य भी नहीं है उत्तर कारण ले लिए सहायता युक्त उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के विशुद्धि स्थान असंख्यात लोक मात्र है, देखो भैया क्या कहना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर उन्होंने स्थिति बंध लिया, वो भी जघन्य स्थिति बंध, अंत कोड़ा कोड़ी होता है ना मिथ्या दृष्टि को वो, परंतु संयम के अभिमुख वाला लिया, उसके कारणभूत विशुद्धि स्थान कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, उसके एक एक के कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाण, वो जो अनुभाग के योग्य स्थान होते हैं अपने अपने असंख्यात लोक, इसमें जो अंतिम विशुद्धि वाला उसके अपने योग्य असंख्यात लोक प्रमाण व अनुभाग बंध के स्थान होंगे, हरेक के असंख्यात लोक असंख्यात लोक, स्थिति बंध एक पर्टिकुलर, उसके साथ विशुद्धि वाले जो उसका स्थिति बंध अधिवसान स्थान वो असंख्यात लोक है, उसमें जो अति विशुद्ध वाला परिणाम है उसको ले रहे, उसमें जो अनुभाग के स्थान वो असंख्यात लोक,
तो संयम के अभिमुख हुए जीव के जो अंतिम स्थिति बनती है ग्यारह वर्ण की, वहाँ पे अनुभाग
उसमें से जघन्य स्थिति की बात बताई है,
जघन्य वो तो जघन्य स्थिति होगी क्योंकि अंतिम समय में जघन्य स्थिति हो जाएगी संयम के अभिमुख, वहाँ पे अनुभाग की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग स्थान बने
हो सकते हैं, असंख्यात लोक इंटू असंख्यात लोक, क्योंकि असंख्यात लोक तो केवल विशुद्धि के स्थान हुए यानी स्थिति बंध अधिवसान स्थान हुए, और उसके एक एक के साथ असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान हो गए। फिर पढ़ते इसको देखो, तो कहते उत्तर कारणों की सहायता युक्त उत्कृष्ट अंतिम विशुद्धि के द्वारा बांधे जाने वाले अनुभाग के विशुद्धि स्थान असंख्यात लोक मात्र हैं। वहां असंख्यात लोक मात्र षट स्थान होते हैं, इसमें जो इतने स्थान बताए हैं इसमें भी उसके जो परिणामों के जो है उसमें भी असंख्यात लोग इतने षट स्थान है, यानी असंख्यात लोग बार अनंत गुणा वृद्धि वाले इतने स्थान हो गए, यानी हर बार एक षट स्थान यानी अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि पूरा झमेला, ऐसे असंख्यात लोग बार उसमें तो ये षट स्थान वृद्धि के स्थान होंगे।
तो यहाँ पे जो ये जो संयम के सन्मुख को बताया और ऊपर जो सपक श्रेणी में बताया, सपक श्रेणी में एक एक की स्थान बताया,
देखो सपक श्रेणी में तो क्योंकि नीचे आए ना नवे गुण स्थान, तो एक एक समान परिणाम, समान परिणाम, समान परिणाम है,
स्वनिवृत्तिकरण तक ही लिया उन्होंने,
हाँ यानी वो तो अपूर्वकरण तक आए ना, अपूर्वकरण में अलग बात होगी,
अलग अपूर्वकरण में अनुभाग की अपेक्षा अलग अलग स्थान हो जाएगी।
पहले कहाँ से ऊपर हम अनिवृत्ति कर तक आ गए,
अनिवृत्ति तक आ गए, अभी संयम के सन्मुख की बात है।
पहले तो उन्होंने अपूर्वकरण तक लाना ऐसा कहा था,
नहीं पहले कहा था पर यहाँ पे अनिवृत्तिकरण काल तक के लिया,
सूक्ष्म सांप्रदाय और अनिवृत्तिकरण लिया। अभी संयम के अभिमुख वाला जीव लिया,
उन्होंने अपूर्वकरण को छोड़ दिया है यहाँ पे,
नहीं नहीं वहाँ वो सारे वो अपूर्वकरण और सब उसमें भी अपूर्वकरण भी छोड़ा है, अध प्रवृत्त करके जो श्रेणी के सन्मुख है उसको भी छोड़ा है, ये अलग बात करना चाहते हैं। हाँ तो कहते वहाँ असंख्यात लोक मात्र षट स्थान होते हैं। अब कहते षट स्थान किसे कहते हैं, ये षट स्थान का स्वरूप अभी यहाँ से समझेंगे पूरा, जहाँ पर अनंत भाग वृद्धि स्थान कांडक प्रमाण जाकर, कांडक प्रमाण है उसके कांडक के लिए हमने दो कहा था ना, उ कांडक प्रमाण, कांडक का प्रमाण कितना है तो असंख्यात बार होगा, अंगुल का असंख्यात भाग, तो जहाँ अनंत भाग वृद्धि स्थान कांडक प्रमाण जाकर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर भी अनंत भाग वृद्धि के ही कांडक प्रमाण स्थान जाकर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि है होती है, इस क्रम से कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धियों के बीतने पर फिर से कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धियां जाकर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है, इसको हम अनंत भाग वृद्धि के लिए हम उ कहेंगे, और असंख्यात बार के लिए कांडक बार के लिए दो बार हुआ है ना, कांडक बार हुआ। ये कांडक बार होता है तब असंख्यात ब्रह्म वृद्धि एक बार होती है, उसके बाद फिर कांडक बार अनंत भाग वृद्धि होती है, एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, हर बार ऊ चार। जैसे ये चार और चार भी जब असंख्यात बार हो जाएंगे तब फिर ऊ होकर फिर पांच आ जाता है, ये संख्यात भाग वृद्धि हुई। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा रिपीट हो जाएगा तब जाके दूसरी बार संख्यात भाग वृद्धि, पूरा रिपीट होगा तीसरी बार, पूरा रिपीट होगा चौथी बार, ऐसे ये भी कांडक बार होना चाहिए। तो ऐसे ही तीन कॉलम इसके आगे और लिखेंगे, तो दो बार हुए, तो दो बार हुए, फिर यहाँ दो बार, यानी यहाँ के आगे के तीन कॉलम ऐसे करके ऊ पांच अंत में आए, दो बार हुए। उसके बाद क्या करना, पूरे ये लाइन लिखकर फिर यहाँ ऊ छः आ जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरा वो दो बार होना चाहिए, नहीं ये ऊ पांच फिर ऊ नौ, कैसे नीचे नहीं आना, भी आड़े लाइन में नौ लेना है, तो ऊ पांच ऊ छः अंत में चला जाएगा, और फिर वो नौ के नौ कॉलम फिर लिखेंगे तो छः दो बार हुआ, फिर सात लेना इस तरह से। ज्ञान मार्गणा में है ना, देखो अभी यहाँ से पढ़ेंगे, ज्ञान मार्गणा में ऐसा ही है, नौ कॉलम किए उन्होंने, शॉर्ट में लिखते तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। टेबल इसमें भी दिया होगा, इसमें भी टेबल होना चाहिए, टेबल इसमें भी होना चाहिए। इसमें नहीं है वो वाला टेबल, क्योंकि उसके बिना तो ये स्थान समझ में नहीं आ रहे। कांडक कांडक सब जगह बताए, परंतु वो चार वर्णन ही किया उन्होंने,
टेबल नहीं बताया।
देखो मैं फिर शॉर्ट में बताती हूँ, फिर कल दोबारा लेंगे। ऐसे नौ कॉलम करना है, पहले में ऊ चार, फिर ऊ चार, फिर ऊ पांच, ऐसे ही तीन और करना, ऊ चार, ऊ पांच, फिर ऊ चार, ऊ चार और ऊ छः। यहाँ क्योंकि ये दो बार पांच आ गए ना, यहाँ पर पांच, यहाँ पर पांच, फिर ये छः आ गए। ये पूरी लाइन हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ छः दूसरी बार आ गया, दो बार छः आया, तो दो बार छः आ जाएगा, तभी तीसरी लाइन में ये पूरी लाइन करके यहाँ सात करना, तो फिर ऐसे ही ऊ चार ऊ पांच ऊ चार ऊ छः ऐसे पूरा। फिर मैं दोबारा कहूंगी तो ऊ छः दो बार आ गया। अब कहते कि ऐसे दो बार ये पूरे नौ का हो गया दो बार, तो यहाँ कहेंगे लास्ट में सात आएंगे, ऊ सात आ जाएंगे, उसमें लास्ट में सात आया, ऐसे ही ऊ चार ऊ पांच यही रहेगा। अब यहाँ दो बार छः फिर सात आए ना, तो ऐसी तीन लाइन और करो, यानी इसमें भी छः छः और सात आ जाएगा,
तो पीछे तीन में
तो ऐसे ये सात, तीन लाइन के बाद सात आया, तीसरी लाइन में सात आया, फिर तीसरी लाइन में सात आया, फिर और तीन लाइन करके लास्ट में यहाँ सात के बदले आठ लेना। हाँ ऐसे भी नाइन और ऐसे भी नाइन, और हर बार बीच में ऊ तो होता ही है, ऊ को कहेंगे अनंत भाग वृद्धि, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, दो का अर्थ होते कांडक, कांडक है ना असंख्यात बार, सुचंगुल के असंख्यात भाग बार। और वहाँ आपने वहाँ भोपाल में सुना था ना द्रव्य परिवर्तन में, दो का अर्थ वहाँ अनंत लिया था, याद है आपको? हाँ, फिर से देखो, षट स्थान किसे कहते हैं, पेज नंबर 120 लास्ट, जहां पर अनंत भाग वृद्धि स्थान कांडक प्रमाण जाकर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर भी अनंत भाग वृद्धि के ही कांडक प्रमाण स्थान जाकर द्वितीय असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस क्रम से कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धियों के बीतने पर फिर से कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धिया जाकर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है, यानी एक बार संख्यात भाग वृद्धि होने के लिए ऊ चार और फिर ऊ पांच हो गया, पांच यानी संख्यात भाग वृद्धि। पश्चात पूर्वोदिष्ट समस्त अधस्थान अध्वान जाकर, यानी पूरे ऊ चार ऊ पांच पूरा ही रिपीट करने पर द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर से भी उतना मात्र ही अध्वान जाकर तृतीय संख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार कांडक प्रमाण संख्यात भाग वृद्धियों के बीतने पर संख्यात भाग वृद्धि के उत्पत्ति योग्य एक अन्य अध्वान जाकर, यानी वहां फिर ऊ चार करने पर फिर ऊ पांच के बदले एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है, यानी वहां 6 नंबर आ गए। पश्चात फिर से आगे समस्त अधस्तन अध्वान जाकर, 6 के लिए जितना पूरा हमने 9 अलग अलग कॉलम देखे थे, द्वितीय संख्यात गुण वृद्धि होती है, दूसरी बार 6 आ जाएगा। इस विधि से कांडक प्रमाण संख्यात गुण वृद्धियों के बीतने पर फिर से संख्यात गुण वृद्धि विषयक एक अन्य अध्वान जाकर, यानी वो 6 के बाद एकदम वो 7 नहीं होता, पूरा 9 कॉलम जाने पर एक बार असंख्यात गुण वृद्धि होती है, 7 हो जाता है। फिर अधस्तन समस्त अध्वान जाकर, यानी जो हमने 9 कॉलम वाले 3 पंक्तियां देखी थी, और 3 पंक्तियां जाने पर असंख्यात गुणवृद्धि का द्वितीय स्थान होता है। इस प्रकार कांडक प्रमाण असंख्यात गुणवृद्धियों के बीतने पर, 2 बार 7 आए ना, फिर 3 पंक्तियां और करना, फिर असंख्यात गुणवृद्धि विषयक एक अन्य अध्वान जाकर एक बार अनंत गुणवृद्धि होती है, यह एक षट स्थान है, ऐसे असंख्यात लोकमात्र षट स्थान होते हैं। उनको कहने के लिए भी ज्ञानावरण का कांडक, यहाँ का कांडक, हर एक जगह यहाँ तो बताया था ना कांडक है ना असंख्यात। हाँ, ज्ञानावरण का, क्योंकि द्रव्य परावर्तन में तो अनंत का होता है। हाँ, अलग जगह अलग अलग, अभी हम यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो। अश्विन भाई,
ब्रह्मा ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वर्धानम नमो।